आप सबका इस्कॉन के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस राम नवमी महोत्सव के शुभ तिथि पर स्वागत है। भगवान ऐसे उत्सव मनाने का हमें अवसर देते हैं जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े, क्योंकि ऐसे जो उत्सव होते हैं आचार्य बताते हैं कि ये भक्ति की जननी है, भक्ति की माता है, क्योंकि हर प्रकार से भगवान की सेवा ऐसे उत्सवों में होती है। भगवान के पवित्र और उनके कथाओं का श्रवण कीर्तन करना, उनके अर्चा विग्रह की सेवा करना, नाना प्रकार की सेवा करना और भक्तों के संग में आकर भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन करना। आज प्रभु रामचंद्र कई लाखों लाखों साल पहले त्रेता युग में प्रकट हुए थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, मैं युग युग में इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूँ और प्रकट होकर दुष्टों का नाश करता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा की हुई है कि वो बारंबार अलग अलग युगों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में अपने भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं और अपने अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान का अवतार लेने का ये है कि वो हमें उपदेश देते हैं और इस शिक्षा को ग्रहण करके हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान की कथाओं को सुनकर, चिंतन मनन करके इनके बारे में हम भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और अंततः हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। जब भी भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं तो शास्त्र में उनकी भविष्यवाणी होती है कि इस रूप में, इस समय और इस स्थान पर भगवान प्रकट होने वाले हैं। जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़े सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार से श्री वाल्मीकि मुनि उन्होंने रामायण इस दिव्य ग्रंथ में प्रभु रामचंद्र जी के दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है, बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर ढंग से। इस वाल्मीकि रामायण की रचना की कथा ये भी बड़ी निराली है। यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कि वाल्मीकि मुनि खड़े हैं और उनके सामने एक बहुत क्रूर शिकारी खड़े हैं जिन्होंने कि एक क्रौंच पक्षी को तीर से मार दिया है। हुआ ऐसे कि जब वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में थे और वो तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए थे, जब लौट रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि ये क्रूर एक निषाद जाति का शिकारी इस क्रौंच पक्षी को मार रहा है और उसके साथ में जो स्त्री पक्षी है वो फूट फूट के रो रही है अपने साथी के शोक में। तो इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि मुनि के हृदय में बड़ी करुणा की भावना जागृत हो गई और तुरंत उस क्रूर शिकारी के प्रति उन्होंने क्रोधित आंखों से देखकर एक शाप दिया और कहा कि हे शिकारी, जिस प्रकार से तुमने इन पक्षियों को इतनी क्रूरता से दुख दिया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम लंबे समय तक सुख की प्राप्ति नहीं करोगे। ये श्लोक का उच्चारण, ये शाप का उच्चारण एक श्लोक के रूप में हुआ, जिसको कि वाल्मीकि मुनि भी नहीं समझ पाए। बाद में जाकर चिंतन मनन करने लगे कि ये श्लोक मेरे मुख से आया कैसे, और ये विचित्र इसका छंद है, बहुत ही सुंदर छंद है। उस समय ब्रह्मा जी वहां आए, जो कि सृष्टि करता है, और उन्होंने कहा कि हे मुनि, आप चिंता नहीं करें, मेरे ही प्रेरणा से ये श्लोक आपके बुखार विंद से निकल पड़ा है। इसी श्लोक में, इस छंद में आप श्री राम की कथाओं का वर्णन कीजिए, जिनको संक्षेप में नारद मुनि ने आपको बताया है। और वैसे भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जो भी श्री राम की कथाएं हुई हैं, हो रही हैं और होंगी, इन सब का पूरी तरह से आपको ज्ञान होगा। आप ऐसे इस सारे रामायण की कथा का दर्शन कर पाओगे, मानो कि आपके आंखों के सामने ये सारी लीलाएं हो रही हैं। इसलिए आप ध्यान में बैठो और श्री राम के लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि ध्यान में बैठे, और जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया था, सारे भगवान की लीलाएं उनके अंतःकरण के चक्षु में, आंखों के सामने ये आने लगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हे वाल्मीकि मुनि, तुम जो भी ये राम कथा का वर्णन करोगे, ये पूरी तरह से सत्य होगा, कभी भी झूठ नहीं होगा, और अनंत काल तक, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तुम्हारी रामायण की कथा इस ब्रह्मांड में प्रचलित रहेगी। तो इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने रामायण कथा आरंभ की। प्रभु श्री राम के प्राकट्य के पहले से ही उन्होंने ये कथा आरंभ की। दशरथ महाराज 60,000 वर्ष होने के बाद भी पुत्रहीन थे। त्रेता युग, सतयुग, ऐसे काल में लोग लंबी आयु जिया करते थे। दशरथ महाराज इतने पुण्यवान धर्मात्मा होने के बाद भी वो पुत्रहीन थे, बड़े दुखी थे। हालांकि उनके पास सब कुछ था, लेकिन अंततः जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और पुत्र काम यज्ञ ऋषि श्रृंग ऋषि के माध्यम से करवाया, तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके तीन रानियों को कुल मिलाकर 4 पुत्र हुए। ये घटना भी बड़ी सुनने लायक है। उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या देवी, उन्होंने जन्म दिया श्री राम को। उसके बाद में सबसे छोटी जो उनकी रानी थी कैकेयी, उन्होंने भरत को जन्म दिया, और बीच वाली उनकी जो रानी थी अंत में, उन्होंने जुड़े बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार से ये 4 बालक, जो कि विष्णु तत्व हैं, विष्णु के ही अंश हैं, भगवान के अवतार हैं, कोई साधारण बालक नहीं है, इन्होंने जन्म लिया, और इक्ष्वाकु के वंश का, सूर्य वंश का गौरव बढ़ाया। दशरथ महाराज और उनके रानियों की और अन्य जो भी अयोध्या के निवासी थे, उनकी खुशी की सीमा नहीं रही इन 4 राजकुमारों को बढ़ते हुए देखकर। और वेदों में विद्वान, शूर वीर, सर्व गुणों से संपन्न ये 4 राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि विश्वामित्र मुनि वहां पर दशरथ महाराज के दरबार में आए, और श्री राम और लक्ष्मण को असुरों का वध करने हेतु ले गए। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ में गए। उन्होंने ताटका, मारीच, सुबाहु और अन्य कई राक्षसों का वध किया, और जब विश्वामित्र मुनि का यह कार्य सफल हुआ, तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, अब मैं आपको मिथिला नगरी की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां की एक विशाल यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। उस रास्ते में चलते चलते वो आए एक बहुत पुराने आश्रम में जब श्री राम ने इस आश्रम का इतिहास पूछा तो प्रभु रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि बहुत साल पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। इनकी पत्नी थी अहल्या। एक बार जब गौतम ऋषि बाहर गए थे तो इंद्रदेव वहां गौतम ऋषि का वेश धारण करके आए और धोखे से वो अहल्या देवी के साथ में रहना चाहते थे। जब गौतम ऋषि वापस आए तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और इंद्रदेव को शाप दिया और साथ साथ अपनी पत्नी अहल्या देवी को भी शाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। जब अहल्या देवी ने क्षमा याचना की तो गौतम ऋषि ने कहा ठीक है, जब भविष्य काल में प्रभु श्री राम के रूप में आएंगे उनके चरण स्पर्श जब यहां होंगे तो उस चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो विश्वामित्र मुनि के साथ में जब राम और लक्ष्मण सिद्धाश्रम से मिथिला नगरी की ओर जा रहे थे तो उस समय गौतम मुनि के आश्रम रास्ते में पड़ा और इस प्रकार से अहल्या देवी का उद्धार हुआ। अहल्या देवी ने नमस्कार किया और साथ साथ में गौतम ऋषि भी वहां पर उपस्थित हुए और इस प्रकार से गौतम ऋषि और अहल्या देवी दोनों फिर से साथ में आ गए। आगे चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण जनक महाराज के दरबार में आए और वहां उनको बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। जनक महाराज बड़े प्रसन्न हुए इन अतिथियों को देखकर और पूछने लगे कि हे मुनिवर, ये दो बालक कौन है? ये लगता है कि साक्षात देवता है जो कि मनुष्य रूप में आए हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राजन, ये आपके दरबार में जो शिव का धनुष है उसका दर्शन करने आए हैं और इस धनुष का इतिहास बड़ा निराला है। बहुत साल पहले ये देवता गण जो हैं, उन्होंने मिथिला के राजा जनक जो कि जिनका नाम था देवरात, उनको एक यज्ञ के समय ये बाण भेंट कर दी थी और ये धनुष वास्तव में शिवजी की थी। शिवजी ने देवताओं को दी थी और देवताओं ने फिर देवरात नाम के जनक राजा को दिया था और ये इतना भारी था कि 500 लोग उसे खींच के गाड़ी पे ले आकर आने की आवश्यकता पड़ती। और जनक राजा ने अपनी पुत्री सीता देवी के स्वयंवर में ये एक शर्त रखा था कि जो भी क्षत्रिय आएगा, जो इस धनुष को उठा पाएगा और फिर इस धनुष से उसको जो तीर है वो बांध देगा, वही सीता देवी का वर बनने के लिए योग्य हो जाएगा। उस समय जब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि श्री राम तो ये बहुत आसानी से इस धनुष को उठा पाएंगे, तो जनक राजा ने कहा कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये धनुष को बड़े बड़े देवतागण, राक्षस, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर इत्यादि ये सब भी नहीं उठा पाए हैं, तो साधारण मनुष्य को उठाने की साधारण बात ही नहीं है। फिर भी विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप श्री राम को नहीं जानते हो। और इस तरह से प्रभु श्री राम ने अपने बाएं हाथ के मुट्ठी में ये धनुष को बीच में पकड़ लिया, आसानी से उसे उठा लिया और वो तार जो होता है धनुष का उसे बांध लिया और इतना ही नहीं बल्कि आसानी से उस धनुष को तोड़ दिया। ऐसे तोड़ दिया कि जैसे एक हाथी एक गन्ने के लकड़ी को तोड़ देता है। और जब ये धनुष श्री राम ने तोड़ दिया तो इतना एक भयंकर आवाज सारे ब्रह्मांड भर में फैल गया कि उस आवाज से जो भी उस महल में उपस्थित थे वो सारे पीछे गिर पड़े। केवल जनक राजा, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि और श्री राम वहीं के वहीं खड़े रहे। बाकी सब जो भी उपस्थित थे, जो हजारों की संख्या में मिथिला नगरी के लोग वहां दर्शन करने आए थे श्री राम का, वो भी उधर उधर गिर पड़े। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने असंभव जो दृश्य था वो कर दिखाया और फिर जनक राजा बड़े प्रसन्न हुए और सीता देवी और श्री राम का विवाह इसके लिए तैयारी हो गया। लेकिन उस समय विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज के अनुरोध पर जनक राजा से ये निवेदन किया कि हे राजन, आपकी जो दूसरी पुत्री है उर्मिला, उसका विवाह भी श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से किया जाए और आपके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी दो पुत्रियां, उनका विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। तो जनक राजा इस प्रस्ताव को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर बड़े धूमधाम से मिथिला नगरी में इन चारों भाइयों का उन चारों बहनों से विवाह हुआ। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई विवाह का अनुष्ठान नहीं हुआ है और नहीं शायद भविष्य में होगा, क्योंकि ये चारों भाई साक्षात भगवान विष्णु हैं और ये चारे बहनें ये भी लक्ष्मी देवी के साक्षात रूप हैं। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह हो गया और खास करके सीता देवी और श्री राम का मिलन पुनः हो गया। वैसे श्री राम और श्री सीता देवी इनकी जोड़ी तो शाश्वत है, ये कभी भी अलग नहीं होते हैं, जिस प्रकार से लक्ष्मी देवी और श्री नारायण, जिस प्रकार से श्री राधा जी और भगवान कृष्ण, ये जोड़ियां जिस प्रकार से कभी भी अलग नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सीता देवी और श्री राम भी कभी भी अलग नहीं होते हैं। दोनों सीता राम उनके धाम में जो कि इस भौतिक संसार के परे हैं, वो वहां निवास करते हैं, जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं, उसी प्रकार सीता देवी और श्री राम इस भौतिक जगत के परे वैकुंठ धाम में जो अयोध्या धाम है वहां वो निवास करते हैं नित्य रूप से। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने पार्षदों के साथ साथ अपने धाम को भी इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत से अपना वृंदावन धाम ही इस पृथ्वी पर प्रकट करवाया, ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने उसी अयोध्या धाम को यहां पृथ्वी पर प्रकट करवाया। और सीता देवी और श्री राम ऐसे लग रहा था कि दोनों अलग हो गए थे और बहुत सालों के बाद इनका मिलन हुआ, लेकिन ये तो भगवान की एक लीला है। इस प्रकार से सीता राम बड़े प्रसन्न हुए एक दूसरे का संग प्राप्त करके। हर्ष उल्लास से मिथिला नगरी के निवासियों ने बड़ी खुशियां मनाई और आज भी इतने लाखों लाखों साल बाद अगर कोई अच्छे पति पत्नी मिलते हैं जो कि आदर्श हैं, आदर्श गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, धर्म परायण हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और अगर पति आदर्श पुरुष हो, आदर्श पति हो और पत्नी आदर्श पत्नी हो, तो आज भी लोग कहते हैं कि देखो ये भी सीता राम की तरह आदर्श गृहस्थ हैं। तो सीता राम दोनों ने एक आदर्श मनुष्य जीवन कैसे बिताना चाहिए ये सिखलाया। जब विश्वामित्र मुनि उस समय विवाह के बाद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए तो दशरथ महाराज के साथ में चारों भाई अपने पत्नियों के संग और अन्य जो ऋषि मुनि थे उनके संग में वो चले गए। चलते 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 जब बहुत दूर चल पड़े थे तो उस समय उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। अचानक वहां बड़ा तूफान आ गया, धूल आने लगी और इतनी भयानक आवाज आने लगी कि केवल दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि, श्री राम और लक्ष्मण के सिवाय सभी लोग घबरा गए। और अचानक उस धुंध में से, उस धुएं में से परशुराम ये प्रकट हो गए। जैसे आप जानते हैं परशुराम जी भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वो क्षत्रियों का नाश कर रहे हैं। ये श्री राम के भी अवतार होने के कई कई साल पहले ये घटना हुई थी, जब क्षत्रियों ने परशुराम जी के पिता जमदाग्नि ऋषि का वध की हत्या की थी। उस समय क्रोध में आकर परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों की पीढ़ियों का वध कर दिया था। लेकिन उसके बाद में परशुराम ने वचन लिया कि अब मैं मेरे अस्त्रों को त्याग दूंगा और केवल तपस्या करूंगा। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, तो उनके हृदय में उत्सुकता जागृत हुई और वो वहां पर आए और बड़े क्रोधित भाव में थे। उस समय दशरथ महाराज कहने लगे परशुराम से कि हे परशुराम, आप इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं? तो परशुराम ने कहा कि मैंने सुना है कि श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, लेकिन मेरे पास एक और धनुष है, विष्णु का धनुष, और इसलिए अगर श्री राम वास्तव में इतना ही शक्तिशाली है तो उसे मेरे पास जो विष्णु का धनुष है उसे तोड़ना चाहिए और फिर वो मेरे साथ में युद्ध करने के लिए योग्य हो जाएगा। उस समय दशरथ महाराज बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि वो श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि अपने प्राण से भी ज्यादा, और श्री राम तो केवल 16 साल के नव युवक थे। हालांकि श्री राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन दशरथ महाराज आखिर पिता थे, इसलिए अपने वात्सल्य प्रेम में भयभीत हो गए थे कि परशुराम इतने शक्तिशाली हैं, न जाने कोई नुकसान कर दें मेरे प्रिय पुत्र के ऊपर। लेकिन श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं इस विष्णु धनुष को आसानी से तोड़ लूंगा। अपने बाएं हाथ में विष्णु धनुष स्वीकार धारण किया, आसानी से उसे तीर लगाया और ये सब देखकर परशुराम आश्चर्यचकित रह गए। और श्री राम ने कहा कि हे परशुराम, मैंने तो तार लगा के अभी तीर तैयार छोड़ा है, अब किसके ऊपर मैं छोड़ू ये तीर? उस समय देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा करना आरंभ कर लिया और इस प्रकार से परशुराम को समझ में आया कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही होंगे, क्योंकि और कोई भी व्यक्ति इस धनुष को उठा नहीं सकता है। फिर वो नम्र होकर हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे श्री राम, तुम स्वयं विष्णु हो, मैं समझ गया हूं, इसलिए जो भी मेरे लिए दंड आप उचित समझते हो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो श्री राम ने कहा कि हे परशुराम, आपने इतने सालों तक तपस्या की है और इस तपस्या के बल पर आप स्वर्ग जाने के योग्य हैं, लेकिन इस तीर से मैं आपके उस पुण्य को छीन लेना चाहता हूं ताकि आप स्वर्ग में नहीं जाओ। परशुराम ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा, लेकिन कृपा करके कम से कम मुझे महेंद्र पर्वत में जाने की अनुमति दें ताकि वहां जाकर मैं तपस्या पुनः आरंभ करूं। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अनुमति दी, परशुराम चले गए। आगे चल के श्री राम, लक्ष्मण, दशरथ इत्यादि अयोध्या आ पहुंचे। वहां पर राजकुमार की गद्दी पर बिठाना चाहते थे दशरथ महाराज, लेकिन कैकेयी के षड्यंत्र से प्रभु राम को वनवास में भेजा गया। सीता देवी और लक्ष्मण भी उनके साथ में आए। सारे जो उनके अयोध्या के निवासी थे बड़े दुखी थे ये देखकर कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण ऐसे वनवास के कपड़े में जा रहे हैं। वास्तव में वो इस योग्य नहीं थे, केवल राजमहल में रहने के योग्य थे। और इस प्रकार से लंबे समय तक अयोध्या के निवासी उनके पास में आए और आखिर अयोध्या के निवासियों को धोखा देकर, गलत रास्ता दिखाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता किसी दूसरे ही रास्ते से निकल पड़े। कई नदियां पार किए, जैसे कि सरयू, वेद श्रुति, गोमती और फिर आखिर में आ पहुंचे गंगा नदी। यहां हम देख रहे हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता देवी गंगा नदी को पार कर रहे हैं और जो नौका नौके में उनको ले जा रहे हैं वो है श्री राम के भक्त गुहा। ये गुहा बड़े अच्छे भक्त थे और मित्र थे प्रभु राम के। जब उनको पता चला कि इस प्रकार से राम का वनवास हुआ है तो उनको बड़ा दुख हुआ और हर तरह से उनके श्री राम की सेवा की और श्री राम से कहा कि आप यहीं पर रहिए, हमारे समाज में हम हर तरह से आपकी सेवा करेंगे और कोई भी कष्ट आपको पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन श्री राम ने कहा कि हे गुह, ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमने वन में निवास करने का वचन लिया है और वन में निवास करने का मतलब ये होता है कि हमें एकांत स्थान में रहना है, बड़े तपस्या का जीवन बिताना है। इसलिए हम तुम्हारे शानदार सेवा की स्वीकार को स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं। उस समय चलते चलते गंगा जी के उस पार पहुंच गए। पीछे आप देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का रथ है जिसको कि सुमंत्र चलाकर ले आए थे। इस बार प्रभु रामचंद्र जी ने सुमंत्र को वापस भेजा। सुमंत्र राजा जो है, सुमंत्र ये राजा दशरथ के मंत्री थे, बड़े निकट के मंत्री थे, बड़ा प्रेम करते थे दशरथ महाराज और उनके सारे वंश, उनके सारे रिश्तेदारों से। कई सालों से दशरथ महाराज के साथ में थे। जब सुमंत्र ने सुना कि कैकेयी के कहने पर दशरथ महाराज ने श्री राम को वनवास में भेजने का निश्चय किया है, तो सुमंत्र बड़े गुस्से में कैकेयी देवी के पास में आए और कहने लगे कि हे कैकेयी, आपको क्या हो चुका है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्या आप नहीं जानते कि श्री राम वो तो साक्षात स्वयं भगवान है और उनको ही बड़े पुत्र होने के नाते राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पिता राजा कैकेय उनको बहुत साल पहले एक वरदान मिला था एक ऋषि से, और ये वरदान ये था कि राजा कैकेय किसी भी पक्षी या पशु की बोली समझ सकते थे। लेकिन ऋषि ने यह शर्त रखा कि हे राजा कैकेय, अगर आपने इन पक्षियों की पशुओं की आवाज सुनकर जो भी बात आपने समझ ली, अगर किसी दूसरों को आपने ये बता दिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार राजा कैकेय अपने पत्नी के साथ में जब वन से गुजर रहे थे तो एक पक्षी की आवाज सुनकर उसके अर्थ को समझ गए और बड़े जोर से हंसने लगे। तो उस समय कैकेय राजा की जो रानी थी उनको गलतफहमी हो गई, उन्होंने सोचा कि राजा मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो गुस्सा होकर उन्होंने पूछा राजा से कि आप क्यों हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं क्या? उस समय राजा कैकेय ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारे ऊपर मैं क्यों हंसने जाऊं, ये पक्षी कुछ कह रहा था और उसकी बोली को सुनकर मुझे बहुत हंसी आ गई। तो रानी ने पूछा कि क्या कहा इस पक्षी ने? तो राजा ने कहा कि मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं इस बात को नहीं बोल सकता तुम्हें, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन रानी का घमंड ऐसे था, क्रोध में आई और कहने लगी अपनी पत्नी से, आप चाहे मर जाएं या जीवित रह जाएं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि इस पक्षी ने क्या कहा है और आप क्यों हंस रहे हैं। तो बड़े दुविधा में पड़ गए राजा कैकेय और फिर ऋषि से बात करने आए और ऋषि से पूछा कि मेरी पत्नी ऐसे हट कर रही है तो मैं क्या करूं? तो ऋषि ने कहा, आपको सख्त रहना चाहिए, किसी भी हालत में उसकी बात माननी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैकेय राजा वापस आए और बहुत डांट दिया अपने प्राणी को, और रानी फिर मान गई, शांत हो गई और अपनी मूर्खता को स्वीकार किया। तो सुमंत्र ने कैकेयी से कहा कि आप उस स्त्री की पुत्री हो जिन्होंने अपने पति की बात मान ली, लेकिन आप एक ऐसी स्त्री हो जो कि अपने पति की बात नहीं मान रही हो। आपके पति की हालत क्या है, क्या दशा है आप नहीं देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपका हट करके आपके ही पुत्र को अब वनवास में भेजना चाहते हो, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन कैकेय ने एक भी नहीं मानी, और जब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा सुमंत्र से कि हे सुमंत्र, अभी आप यहां से चले जाओ, लौट जाओ, अभी सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सुमंत्र कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको यहां छोड़कर कैसे जा सकता हूं, अयोध्या निवासियों का सामना करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा सारे अयोध्या वासियों को, दशरथ महाराज को, कौशल्या देवी को, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन फिर भी श्री राम ने उनको समझाया और वापस भेज दिया और बड़े ही दुख से सुमंत्र राजा लौट कर आए। जिस समय श्री राम का वनवास हुआ था उस समय भरत और शत्रुघ्न ये दोनों अपने मामा के घर में के राजा के घर में गए थे और दशरथ महाराज उधर अयोध्या में राम के विरह में उनका देहांत हो गया और वशिष्ठ मुनि ने तुरंत भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजे। भरत जब लौटकर आ गए और उन्होंने सुना कि कैकेयी उनकी माता ने क्या किया है तो बड़े क्रोधित हो गए और कैकेयी से न जाने किस प्रकार के कठोर वचने किए और फिर कहने लगे कि किसी भी हालत में मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, मैं तो श्री राम का दास हूं और इसलिए श्री राम ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं जो कि इस अयोध्या नगरी के राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। और वशिष्ठ मुनि, अन्य ऋषि मुनि और सभी अयोध्या वासियों के कहने पर भी भरत ने उनकी एक नहीं मानी और उन्होंने सुमंत्र से कहा कि हे सुमंत्र, मुझे ले चलो श्री राम के पास और मैं उनको अनुरोध करूंगा, बल्कि उनको जबरदस्ती में ले आऊंगा और राजगद्दी पर बिठाऊंगा। सुमंत्र को पता चल गया था गुह निषाद के जासूसों के द्वारा कि श्री राम अब चित्रकूट नाम के पवित्र स्थान में उस वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तो उस समय भरत ने ये ठान ली कि मैं भी चित्रकूट जाऊंगा और बड़े बड़े सड़क और राजमार्ग तैयार किए गए केवल इस वजह से कि भरत अपनी सेना और मंत्रियों और अपनी माताओं को साथ में लेकर श्री राम के पास जाना चाहते थे। बहुत जल्दी ही ऐसे राजमार्ग तैयार हो गए और भरत महाराज आखिर में श्री राम के पास उनकी कुटिया में आ पहुंचे। आज भी चित्रकूट में, जो कि इलाहाबाद के बहुत नजदीक है, प्रयाग के नजदीक है, वहां पर ये भरत मिलाप का स्थान है और ये सारी लीलाएं जो प्रभु रामचंद्र जी ने चित्रकूट में किए ये अलग अलग स्थली भी वहां पर हैं। तो भरत महाराज ने बहुत प्रयत्न किया, श्री राम से निवेदन किया कि आप आइए और राज कीजिए, लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, मुझे धर्म का पालन करना होगा, मेरे पिता ने वचन दिया है और मैंने उनको वचन दिया है, इसलिए मुझे वचन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसलिए हे राम, हे भरत, तुम ही जाके राज्य करना। उस समय भरत ने सोचा कि और कोई उपाय नहीं है, तो फिर उस समय भरत ने कहा कि ठीक है, ये मैंने आपके लिए पादुकाएं बनाए हैं, इन पादुकाओं को कृपा करके स्वीकार करें, जब इन पादुकाओं से आपके चरण कमलों का स्पर्श होगा तो इन पादुकाओं को लेकर मैं राज सिंहासन पर बिठाऊंगा और इस तरह से मैं आपका प्रतिनिधित्व करके मैं यहां पर राज करूंगा। उस समय प्रभु राम ने इस निवेदन को स्वीकार किया और उन अपने चरणों से उस पादुकाओं का स्पर्श किया और इस प्रकार से भरत वहां पर लौट के चले गए। उधर जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण ऋषि मुनियों का जीवन जीते थे, कंद मूल फल फूल इत्यादि पर जीते थे। लक्ष्मण ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें निवास करते थे। कहां राजमहल और राज दरबार में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारी और कहां इस कठोर जंगल में रहने वाले ये ऋषि मुनियों की जीवन जीने वाले। इसलिए यहां पर कांटों और पत्थरों से खाली पैर इनके ऊपर चलते चलते सीता देवी ने भी एक भी बात शिकायत नहीं की। यही पत्नी का धर्म होता है। सीता देवी ने दिखाया कि हर परिस्थिति में अपने पति का साथ किस तरह से देना चाहिए। अयोध्या छोड़ने के पहले भी कौशल्या देवी ने सीता देवी से कहा था कि देखो हे सीता, जब बुरी परिस्थिति आ जाती है तो संसार में ऐसे देखा जाता है कि पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सीता देवी ने जवाब दिया था कि हे माते, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूं और श्री राम को मैं कैसे छोड़ सकती हूं, वो तो मेरे साक्षात आराध्य देव हैं। इस प्रकार से सीता देवी और श्री राम दोनों लक्ष्मण के संग वहां रहने लगे। आगे चित्रकूट को छोड़कर वो दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य में श्री राम ने कई असुरों का वध किया, वहां ऋषि मुनियों का संग किया और इन असुरों का वध करके ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया। आगे चलते चलते दंडकारण्य से आगे पंचवटी में आए। गोदावरी के तट पर एक बार जब श्री राम और सीता देवी वहां बैठे हुए थे तो सीता देवी ने एक बहुत ही सुंदर मृग को देखा। इस मृग को इस चित्र के दाहिने कोने में आप देख सकते हैं। सीता देवी ने जब ये मृग को देखा तो बड़े आकर्षित हो गई। इतना सुंदर मृग, स्वर्ण रंग का, ऐसे लगता था कि चाहे देवलोक से आया हुआ हो। और कभी कभी उछलकर इधर उधर कूदता, कभी इधर आता कभी उधर जाता और अपने कोमल नेत्रों से सीता देवी की ओर देखता। सीता देवी का हृदय पूरी तरह से इस हिरण ने जीत लिया और सीता देवी ने इच्छा रखी कि मुझे भी ये हिरण चाहिए। उस समय प्रभु रामचंद्र जी भी इस संसार के एक पति के समान व्यवहार कर रहे थे। कई बार ऐसे देखा जाता है संसार में कि पत्नी को जब कोई इच्छा होती है कोई चीज प्राप्त करने के लिए तो पति को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पति भी तैयार हुए। श्री राम कहने लगे, ठीक है, मैं इस हिरण को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। उस समय लक्ष्मण ने चेतावनी दी कि ये उचित नहीं है, मुझे लगता है कि वास्तव में ये जो हिरण है ये राक्षस मारीच है और इस मारीच राक्षस ने वेश बदलकर ये हिरण का रूप स्वीकार किया है ताकि आगे चल के कोई सीता देवी का अपहरण कर ले जाए। इस प्रकार से लक्ष्मण की चेतावनी सुनने के बाद भी सीता देवी ने बात नहीं मानी, हट किया कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहो, हम आगे जा रहे हैं इस हिरण के लिए, तुम सीता देवी की रक्षा करो। इस प्रकार से श्री राम वहां पर गए और वो हिरण के पीछे पीछे जाते रहे। वो हिरण जंगल के भीतर और भी भीतर जाने लगा, इधर उधर कभी ओझल हो जाता, अदृश्य हो जाता, कभी दिखाई पड़ता, अचानक इस बाईं ओर लपक पड़ता तो कभी दाईं ओर। इस प्रकार से श्री राम उस हिरण को पकड़ नहीं पाए, लेकिन पीछा करते करते आखिर श्री राम ने अपने तीर को धनुष में लगाकर तीर छोड़ दिया और फिर उस हिरण का वध कर दिया। और उस समय उस हिरण ने अपना असली स्वरूप जो कि मारीच राक्षस का था वो स्वीकार कर लिया और मरते क्षण में उस राक्षस ने श्री राम की आवाज में चिल्लाया और कहने लगा, हे सीते, हे लक्ष्मण। ये आवाज दूर जब सीता देवी और लक्ष्मण ने सुना तो दोनों बड़े चिंतित हो गए, लेकिन सीता देवी पत्नी होने के नाते ज्यादा चिंतित हो गई और तुरंत कहने लगी लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, तुरंत जाओ, शायद वहां राम कोई कष्ट में है, राम की सहायता के लिए जाओ। तो लक्ष्मण को मालूम था कि शायद ये कोई खेल है मारीच राक्षस का, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण ने सीता देवी को समझाने का प्रयास किया कि हे देवी, श्री राम को आप नहीं जानती हैं क्या? श्री राम की शक्ति अपार है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि श्री राम के सामने आ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, श्री राम स्वयं के संरक्षण करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। सीता देवी को बड़ा क्रोध आया, कहने लगी कि अब मैं समझ गई कि तुम्हारे मन में कौन सी इच्छाएं थीं। तुम चाहते थे कि श्री राम हमसे अलग हो जाए और जब श्री राम ऐसे कष्ट में आ जाए तब तुम मेरा भोग कर पाओगे। श्री राम ने जब ये वचन सुने तो उनको ये कटु वचन तीर के समान उनके हृदय को चुभे। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता देवी जो कि एक साधारण इस संसार की महिला का की भूमिका निभा रही थी वो एक नहीं मानी। उस समय बड़े भारी दुविधा में पड़ गए, द्वंद में पड़ गए लक्ष्मण कि क्या किया जाए। एक और वो जानते थे कि श्री राम कभी कष्ट में नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी राम का दर्शन करना चाहते थे, और दूसरी ओर सीता देवी ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। तो उस समय श्री राम को दर्शन करने के लिए लक्ष्मण चले गए, और जैसे ही लक्ष्मण वहां से चले गए, वो दुष्ट राक्षस रावण वहां पर आया। उसने एक सन्यासी के गहरे में वस्त्र पहने हुए थे, और सीता देवी ने पहचाना नहीं, सोचा कि कोई सन्यासी है, तो अपने घर में अपने छोटी से कुटिया में उस राक्षस का स्वागत।
इस तरह से शत्रु की सेवा स्वीकार की श्री राम और लक्ष्मण ने और आगे चल गए। यह किष्किंधा क्षेत्र था, और जैसे ही किष्किंधा क्षेत्र में ऋषिमुख पर्वत के ऊपर निवास करने वाले सुग्रीव ने देखा कि कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं जो क्षत्रिय के समान लग रहे हैं, तो वो थोड़े भयभीत हो गए। सोचने लगे कि क्या मेरे भाई बाली ने इनको भेजा है मेरी हत्या करने के लिए। वास्तव में वाली उस किष्किंधा के राजा थे, लेकिन एक बार जब किसी पशु का वध करने के लिए, एक प्रतिद्वंदी का वध करने के लिए वो शहर के बाहर गए थे, कई दिनों तक लौट कर नहीं आए, तो सभी ने सोचा कि शायद वाली का ही वध हो गया होगा। तो सुग्रीव ने राजगद्दी पर बैठने का निश्चय किया, लेकिन थोड़े दिन बाद वाली लौट कर आए और बड़े क्रोधित हुए ये देखकर कि सुग्रीव उनके राजगद्दी में बैठे हैं और उनको हरा दिया युद्ध ने, और सुग्रीव को किष्किंधा नगरी से बाहर हटा दिया, और उसके बाद में ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहने लगे बड़े भयभीत अवस्था में, और उनके साथ रखे हनुमान और थोड़े और उनके विश्वसनीय साथी। जब सुग्रीव ने देखा तो उन्होंने हनुमान को भेजा। हनुमान वेश बदलकर आए राम और लक्ष्मण के सामने, और जब ब्राह्मण के वेश में आए तो राम लक्ष्मण को पता चला कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, और तब उस ब्राह्मण ने अपना असली स्वरूप प्रदर्शित किया, और हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्री राम और श्री लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव आपका राय देख रहे हैं, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। उस समय श्री राम ने कहा हनुमान से कि हम तो बहुत थके हुए हैं, बहुत लंबे दूर से हम आ रहे हैं। तो हनुमान ने कहा कि कोई चिंता नहीं है, हनुमान ने अपने स्वरूप को बढ़ा दिया और श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और एक छलांग लगाई और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आ पहुंचे। उधर सुग्रीव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो सुग्रीव और श्री राम के बीच में वहां पे एक मित्रता का एक समझौता हुआ, और जिसमें श्री राम ने यह वायदा किया कि मैं वाली की हत्या करूंगा और हे सुग्रीव तुम्हें किष्किंधा नगरी के राजगद्दी में बिठाऊंगा, और तुम सीता देवी को ढूंढ निकालने के लिए मेरी मदद करोगे, और रावण की हत्या करने के लिए तुम्हारी सेना मेरे साथ में आएगी। तो इस प्रकार से दोनों की मित्रता का समझौता हो गया, और इस प्रकार से अलग अलग दल सुग्रीव ने भेजे अलग अलग दिशाओं में सीता देवी को ढूंढ निकालने के लिए। उधर हनुमान जिस दल में थे उसके राजा थे, उसके प्रमुख थे अंगद, तो अंगद अन्य वानर सेना के साथ में बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन सीता देवी को कहीं भी ढूंढ नहीं निकाले, बड़े निराश हो गए थे। उस समय संपाती नाम के जो जटायु के बड़े भाई थे उन्होंने मार्गदर्शन किया उस वानर सेना को और कहा कि मेरी तेज दृष्टि से मैं 100 योजन दूर देख पा रहा हूँ कि लंका में जो कि त्रिकुट पर्वत पर है, अशोक वाटिका में रावण के महल के उस उद्यान में सीता देवी बड़ी निराश और दुखी अवस्था में वहां पर बैठी हुई है। तो जब ये खबर सुनी सभी लोगों ने, वानर सेना के हनुमान के दल ने, तो बड़े प्रसन्न हुए और एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि कौन लंका जाएगा। लेकिन लंका 100 योजन दूर है यहाँ भयंकर पर्वत। लक्ष्मण तो अखंड ब्रह्मचारी रहे हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ परिचय में बताया गया कि लक्ष्मण का भी विवाह हुआ। ये सही है क्योंकि वाल्मीकि जी का रामायण जो है ये सबसे मूल और अधिकृत रामायण है, तो इसमें बड़े स्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से श्री राम के साथ साथ में केवल लक्ष्मण में नहीं लेकिन भरत और शत्रुघ्न ने भी विवाह किया। ये चारों भाइयों ने उस समय विवाह किया और लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम था उर्मिला, जो भी सीता देवी की छोटी बहन थी और जनक राजर्षि दशरथ की छोटी पुत्री। और कोई प्रश्न है?